मे दिव्यम
एवं यो वेति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन
जन्म कर्म च मे दिव्यम्
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन, तो हम वंदनम इसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो बुधवारों से हमने शीर्षक लिया फ्रॉम ईमेल टू नीमेल। वंदनम अर्थात प्रेयर। तो कोई भी धर्म आप लीजिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म, कोई भी धर्म आप लीजिए, ये जो वंदनम की विधि है ये सब धर्मों में निर्धारित है और बहुत इनके अलग अलग धर्मों में जो भी इनके मसीहा हुए होंगे उन्होंने यदि कोई एक विधि बताई जिसके द्वारा आप परवरदिगार से कनेक्ट कर सकते हो तो उन्होंने ये वंदनम या प्रेयर की विधि बताई। इसलिए आज की शुरुआत हम इस कोट से करते हैं, प्रेयर इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइन हार्ट। जैसे कि आजकल कम्युनिकेशन का जमाना है, सब जगह पर कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है, आप कहीं पर भी रहो आप कांटेक्ट में रह सकते हो, यहां तक कि अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में जाने के बाद भी उनका कम्युनिकेशन बना रहता है ग्राउंड स्टाफ से। कम्युनिकेशन चाहे मोबाइल फोन के द्वारा, चाहे वो कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हम लोग अपने आप को हर समय कनेक्टेड रखते हैं किसी से। तो यदि भगवान से कनेक्शन बनाए रखना है तो यहां पर क्या बताया गया, इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। जैसे कई बार ये प्रश्न, थोड़ा सा ये बचकाना प्रश्न होगा कि यदि भगवान को हम हमारी मातृभाषा में प्रार्थना करें तो भगवान को समझ में आएगा, क्योंकि वो तो वृंदावन के, मैं केरला का हूं या मैं गुजरात का हूं या बंगाल का हूं, तो क्या भगवान को ब्रज भाषा में ही प्रार्थना करनी होगी? नहीं नहीं, भगवान देखो कितने कृपालु हैं कि जहां कहीं पर भी भारत में, जहां कहीं पर भी आप रहो, भगवान वहां पर अपना लोकल अवतार लिए हैं। हाँ ठीक है, कोई कहे कि मैं केरला, तो गुरुवायूर भगवान है, मलयालम समझेंगे वो सांबर राइस खा के वहां पर मलयालम समझ रहे हैं, वही कृष्ण है। आप कर्नाटक में जाओ, उड़पी कृष्ण है। हाँ, आप कन्नड़ा में बोलो, कितने उधर के जो कवि हुए भगवान के, पुरंदर दास इत्यादि, उन्होंने कन्नड़ा में रचना की है उनकी कविताओं की। आप गुजरात में जाओ, आप बंगाल में जाओ, आप उत्तर भारत में जाओ, जहां कहीं पर जाओ, यहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज ने मराठी में सब कुछ दे दिया, तो विठ्ठल भगवान वो महाराष्ट्रियन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, वही कृष्ण हैं। और उन्होंने, यहां पर तो हम यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, परंतु लोकल लैंग्वेज में भी कनेक्ट करने के लिए भगवान अपने अपने सर्वर्स लगा दिए। आजकल ये सब भाषा ज्यादा समझ में आती है। बचपन में हमको हमारी टीचर एक कहानी सुनाया करती थी, तो ये मिसेज मार्गरेट, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी ये मैथमेटिक्स टीचर थी, तो मैथमेटिक्स के अलावा भी बहुत कुछ ये हमसे पर्सनली कुछ कहानी सुनाना या उनको वैल्यू सिखाना इत्यादि। तो एक बार इन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक चर्च में एक परिवार हर संडे प्रार्थना करने के लिए वो लोग जाते थे। तो छोटा सा बच्चा, उसे समझ में नहीं आता था कि चर्च क्या है, माता पिता मुझे क्यों हर संडे चर्च में ले जाते हैं और करते क्या ये लोग, है ना। छोटे बच्चों को ये सब कुछ आध्यात्मिक कार्य इतने समझ में नहीं आते, जब तक वो बड़े होते हैं फिर उनको समझ में आता है कि कितना इसका महत्व है। हाँ, वो लोग सीख लेते हैं परिवार के अंदर, जो भी कुछ नरसिंह आरती उनको बताई जाए इत्यादि, वो सब कुछ हो जाता है, परंतु उसका मर्म जानना, तो ये छोटा बच्चा ये जानता नहीं था कि क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है। ये मेरे माता पिता हर संडे यहाँ चर्च में आके प्रेयर्स ऑफर करते हैं। तो एक बार अपनी माँ से बच्चा पूछता है कि व्हाट डू यू डू, व्हाट इज दिस हैपनिंग, यू फोल्ड योर हैंड्स, यू गेट डाउन ऑन योर नीज, क्या करते हैं आप। तो माँ कहती है, वी प्रे टू द लॉर्ड, टू आर beloved father। तो ये पूछता है प्रेयर मतलब क्या। तो अब मां सोची कि ये इसको अभी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन प्रेयर का क्या समझ में आएगा। तो मां ने कहा, इट इज ओपनिंग अप योर हार्ट टू द लॉर्ड, जस्ट ओपन योर हार्ट टू द लॉर्ड। तो बच्चे ने पूछा, बट यू से समथिंग, कुछ बोलते भी हो तुम लोग, जैसे उनके बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, ओ लॉर्ड गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, इस प्रकार से बहुत से प्रार्थनाएं, हैलोड बी थाय नेम इत्यादि। तो ये बच्चा पूछ रहा था कि आप क्या बोलते रहते हो। अम्मा ने सोचा कि ये तो इसको क्या आप समझ में आएगा, ये जो हम लोग प्रार्थना बोलते। तो माँ ने कहा बच्चे से कि वट एवर योर हार्ट फील्स, यू स्पीक टू द लॉर्ड। बच्चे ने इतना समझ लिया, इतना समझ में आया बच्चे को। अगले संडे, संडे मास में बच्चा जो है वो भी हाथ जोड़कर, कुछ उसके वो ये होंठ हिल रहे थे, हाथ जोड़कर कुछ तो आंख बंद कर कर बोल रहा है। तो हुआ क्या कि माता पिता उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो जो फादर था वो फादर देख रहा था, ये छोटा बच्चा बहुत ही इंटेंसली कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रहा है। तो फादर बहुत इंप्रेस हुआ। अगले संडे फिर से, फिर ऐसा हुआ कि कई संडे मां बाप नहीं आ सके, बच्चा अकेला आ गया और अकेला हाथ जोड़कर घंटों कुछ बोल रहा है भगवान से। तो ये फादर अब न केवल इतना इंप्रेस था, बल्कि वो थोड़ा क्यूरियस हो गया कि मैं फादर हूं, यहां के इस चर्च का मैं पुजारी हूं, परंतु मैं घंटों तक इतनी प्रार्थना मैं नहीं बोल सकता, ये क्या बोलता है, कहां से सीख क्या है, कौन सी प्रार्थना है, जानना चाहिए। तो ये वो संडे बच्चे को रुकाता, बोला रुको, तुम क्या भगवान से प्रार्थना करते हो, क्या बोलते हो तुम, घंटों तक मैं देखता हूं तुमको, हर संडे तुम आ रहे हो। बच्चे ने कहा, मेरे को मेरी मां ने बताया कि जो तुम्हारे हृदय में है भगवान के सामने तुम हृदय खोल कर बोला करो। तो मुझे तो अभी तक एक ही चीज आती है, ABCD। तो मैं, मुझे बस वो ही सिखा है मैंने अभी तक, तो मैं वो शुरू करता हूं, ABCDEFG। तो फादर ने जब सुना तो फादर मतलब वो सोचने लगा कि बच्चा है और क्या, ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या हा? तो उसने फिर इस तरीके से बच्चे को छोड़ दिया, मानो ये जब बड़ा होगा तब मैं इसको सिखाऊंगा कि असली वंदना या प्रार्थना क्या होती। उस रात इस फादर के भगवान, इस फादर के फादर इसके सपने में आए और इसको कहते हैं, डू यू थिंक दैट द प्रेयर्स विच यू ऑफर टू मी आर ग्रेटर देन द प्रेयर्स विच दैट चाइल्ड वॉज ऑफरिंग टू मी। फादर एकदम डर गया, हिलने लगा। तो इन्होंने कहा, भगवान ने फादर को एक्सप्लेन किया, द प्रेयर्स विच यू ऑफर टू मी, व्हाट आर दोज प्रेयर्स? दोज प्रेयर्स आर बंद करो फैंस। ओ अच्छा, भगवान इसको कहे, द प्रेयर्स विच यू ऑफर, व्हाट आर दीज प्रेयर्स? दे आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसीडी। योर प्रेयर्स आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसीडी एंड योर प्रेयर्स आर नॉट कंप्लीट एबीसीडी ऑल्सो, है ना? अगर ये प्रेयर वो ऑफर करते हैं, ओ लॉर्ड गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, इसके अंदर सारे 26 अल्फाबेट थोड़ी आए। तो भगवान ने इसे कहा कि बट दैट चाइल्ड इवन क्वांटिटी वाइज इज ऑफरिंग मोर प्रेयर्स एंड हाउ आई ट्रांसलेट व्हेन ही ऑफर्स, आई ट्रांसलेट एज अ परफेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ सम आर्टिकुलेट प्रेयर्स ऑफर्ड टू मी। So don't think that that child is doing anything less than anyone else who is offering prayers to me. Universal language. इसलिए कई बार हमको कहा भी जाता है कि हमें जो हृदय से प्रार्थना होती है, और विशेष रूप से बच्चे जो हैं उनका हृदय तब तक तो साफ रहता है, इसलिए वो जो ऑफर करते हैं उसकी स्वीकृति होती है क्योंकि हृदय शुद्ध है। अभी इस ट्रिप में मैंने एक फैमिली में देखा, एक छोटा बच्चा, जैसे हम लोग महाप्रसादे गोविंदे प्रार्थना गाते हैं प्रसाद लेने से पहले, तो मैंने देखा कि वो प्रसाद सर्व हो चुका था और ये बच्चा महाप्रसादे गोविंदे मतलब कुछ तो जल्दी जल्दी बोला और प्रसाद शुरू कर दिया खाना, और हम लोग सब पूरी महाप्रसादे प्रेयर्स करने के बाद, तो फिर मैंने इसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी महाप्रसादे प्रेयर्स गाते हो, तो उसने कहा हाँ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाने की कोशिश की तो मुझे वो पूरी, आप लोग जो लंबी प्रेयर्स गाते हो मुझसे एक तो रुका नहीं जाता है, हमारे बड़े भी ऐसे ही होते हैं कई बार, वो अगर प्लेट में सर्विंग हो जाए फिर जो महाप्रसादे का स्पीड है भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी लाइन कहां पर है। तो ये बच्चे ने कहा कि मुझे मेरी मां सिखाने की कोशिश की लेकिन वो मुझे पूरी प्रेयर मैं नहीं सीख पा रहा, तो मैंने कहा फिर तुम क्या गाते हो? तो उसने कहा महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेयर है, इसका मतलब ये नहीं कल से अभी आप भी शुरू हो जाओ। महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे, यही मिसेस मार्गरेट ने एक बार हमको क्लास में पूछा था। So children, you all recite prayers before you take your food. अभी कईयों ने हाथ ऊपर किया, मैं सेकेंड बेंच पे बैठा था, मेरा हाथ ऊपर नहीं हुआ तो मुझे खड़ा किया। So you don't offer prayers before you eat your food. तो अब मैंने हाथ ऊपर नहीं किया मतलब I don't offer. अब उसको जस्टिफाई भी करना है ना, तो मैंने कहा यस मैम माय मदर इज अ गुड कुक। तो कई बार जैसे एक बार पति पत्नी भी होटल में गए थे, तो पत्नी पूछी तुम आज गा नहीं रहे महाप्रसाद, तो पति कहता है कुक को आता है कुकिंग करना। सो ये जो वर्ड है प्रे, इसको हमने एक्रोनिम बनाया जिसकी हम सब संक्षिप्त रूप में पिछले बार भी चर्चा किए थे और विस्तार से आज करेंगे। पी स्टैंड्स फॉर प्लीडिंग, आर स्टैंड्स फॉर रिपेंटिंग, ए एप्रिशिएटिंग, वाई यर्निंग। तो जब हम हमारा हरे कृष्ण महामंत्र भी रोज जप करते हैं तो उसमें ये चार कंपोनेंट्स होने चाहिए, प्लीडिंग, सेंस ऑफ रिपेंटेंस, फिर एप्रिसिएशन फॉर द लॉर्ड और याचना, भगवान से याचना करना। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में तीन प्रकार की प्रार्थनाएं बताई है जो कि हमने उसको और विस्तार कर समझने की कोशिश की है, प्रारंभ किया है। सबसे पहला टाइप उन्होंने कहा है संप्रार्थनात्मिका, जिसके अंदर आप प्रार्थनाओं में भगवान का गुणगान करते हो। तो ये जो कैटेगरी है इसको रूप गोस्वामी संस्कृत टर्म जिसको वो दिए हैं संप्रार्थनात्मिका, एक्सेप्टिंग द पोजिशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, पोजिशन, देन अवर डिस्पोजिशन, लॉर्ड्स पोजिशन एंड अवर डिस्पोजिशन। तो वो है सेकेंड कैटेगरी दैन्य बोधिका। तो भगवान का पोजिशन क्या है, वो हमारे सृष्टि करता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इत्यादि, उनकी महानता, और हमारा डिस्पोजिशन किस प्रकार से होना चाहिए, नम्रता का, दैन्य बोधिका। और फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में जो थर्ड कैटेगरी रूप गोस्वामी बताते हैं लालसामयी, लालसामयी का अर्थ है फिर हम भगवान से कुछ याचना। अब वो क्या करना है वो भी वो बताते हैं, ये नहीं कि हम ये बता दें भगवान मेरा ईएमआई माफ करवा दो, उस प्रकार की याचनाएं नहीं। लालसा, ये शब्द से भी समझ में आएगा, क्या लालसा होनी चाहिए भगवान से, हम उनकी किस प्रकार की कृपा की लालसा करें, ये है लालसामय। तो हमने वंदनम के जो चार स्वरूप जो कि रूप गोस्वामी तीन में दिए हैं, हम इसको और थोड़ा विस्तार से ताकि हम अच्छे से समझ पाए, दैन्यता, कृतज्ञता, स्तुति और अंत में प्रार्थना। तो हमने पिछली बार स्तुति इस मुद्दे को लिया था जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, जब हम भगवान की स्तुति, अब देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग बात यह है भगवान की स्तुति की, कि भगवान के नाम रूप गुण लीला की जो स्तुति है हम कैसे कर सकते हैं, कोई बद्ध जीव कैसे कर सकता है, जो असीमित भगवान हैं उनकी स्तुति कोई कैसे कर सकता है। तो यह बताया गया है कि स्तुति जब हम करते हैं भगवान की तो जो प्रेजेंट उनके नाम रूप गुण जो लीलाएं हैं उनकी ही हम कर सकते हैं, और वो भी मुश्किल है करना, क्योंकि जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कमल के समान सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल पुष्प कमल के समान सुंदर है, यदि मैंने स्तुति भगवान का गुणगान इस रूप से किया तो उसी क्षण भगवान की सुंदरता बढ़ गई। सो इवन इफ यू ट्राई टू ग्लोरीफाई कृष्णा's प्रेजेंट क्वालिटीज इट इज इम्पॉसिबल। जैसे कि यदि आपको मैं पूछूं कि बताइए ठीक ठीक समय क्या हुआ है, क्या प्रश्न पूछा ठीक ठीक समय क्या हुआ, तो यदि आप जवाब में कहो 8:26:45 seconds, तो बोलने में मुझे एक सेकंड लगा। तो जैसे ही मैंने 45 सेकंड्स बोला, घड़ी क्या दिखा रही है 46, तो मैंने गलत समय बोला ना। तो यदि मैं एक सेकंड पीछे का समय बोलूं तो भी मैं गलत बोल रहा हूं, एक सेकंड आगे का बोलूं तो भी मैं गलत बोल रहा हूं, वर्तमान अभी का टाइम बोलने जाऊं तो बोलने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि समय वो कांटा आगे भाग गया। उसी प्रकार से भगवान की क्वालिटीज भी ऐसी, यदि अभी हम भगवान के रूप का गुणगान करने जाएं तो उसी क्षण भगवान के रूप में वृद्धि हो गई। यहां पर क्या है, हम लोग यदि एक दूसरे की स्तुति करते हैं तो उल्टा है। टीचर ने स्टूडेंट से, ग्रामर टीचर, इंग्लिश ग्रामर टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा, बोर्ड पर उन्होंने लिखा एक लाइन, वो ये सब सिखा रहे थे कि वर्तमान काल भविष्य काल इत्यादि टेंस, तो लिखा आई एम ब्यूटिफुल, विच टेंस इज दिस, स्टूडेंट ने कहा पास्ट टेंस। तो ये हमारी स्थिति है, क्योंकि हमारी स्थिति है इसलिए हमारी स्तुति नहीं हो सकती। तो पिछली बार हमने द ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा कैन बी ग्लोरिफाइड थ्रू आर्ट म्यूजिक डांस पोएट्री। तो अब हम यदि इसी मुद्दे को और गहराई से समझने जाएं तो दो कैटेगरीज हम लेंगे, ग्रेटनेस और स्वीटनेस। तो भगवान की महानता और भगवान की मधुरता। तब देखिए विशेष रूप से हमारे वैदिक ग्रंथों में भगवान की महानता के साथ साथ भगवान की मधुरता पर भी इतना जोर दिया है। नहीं तो आप हर समय बाकी धर्मों में पढ़ोगे गॉड इज ग्रेट, बहुत महान है भगवान, परंतु जब ये देखने जाएं कि क्या वो महान भगवान एक्सेसिबल कितने, सो एक्सेसिबिलिटी के लिए स्वीटनेस होना जरूरी है। अक्सर जो बहुत महान होता है इनएक्सेसिबल हो जाता है, परंतु यदि अपनी महानता के साथ वो व्यक्ति अपनी मधुरता भी बनाए रखे तो उसकी महानता उसके एक्सेसिबिलिटी के बीच में एक बाधा नहीं बनती। इसलिए ये जो बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है हमारे सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में, कि भगवान की महानता और भगवान की मधुरता। जैसे कि हम भगवान कृष्ण को लें तो ये दो जो चीजें हैं, जिसमें एक में भगवान की काबिलियत समझ में आती है, कॉम्पिटेंस, और स्वीटनेस से समझ में आता है कि भगवान कितने इमोशनल हैं, एक सेंशियंट व्यक्ति हैं, उनका कैरेक्टर वो समझ में आता है। तो यदि हम भगवान कृष्ण को लें तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं में दोनों प्रदर्शित किया, यहां तक कि वृंदावन में भगवान अपनी महानता प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ब्रजवासियों का प्रेम इतना कि वो महान श्री कृष्ण, ऐश्वर्यशाली षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के सामने वो भी पिघल गए। तो ब्रजवासियों के विषय में बताया गया है कि उनकी जो स्वीटनेस वो इतनी ज्यादा कि भगवान की मधुरता भी उनके सामने फीकी पड़ रही थी। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी वो एक सुंदर पद में कहे हैं, कृष्णेन न व्रज जन किल मोहितास्ते तैस व्यमोहि भगवान इति सत्यमेव गत्वा मयैव सहि विस्मृत देव कार्यो नुस्मारिति किमिति कृत्य न हो कथंचित। इस सुंदर श्लोक में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्णेन न व्रज जन किल मोहितास्ते, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे तो उन्होंने प्रयास किया कि मैं ब्रजवासियों को इंप्रेस करूं, भाई मैं भगवान आया हूं तो मैं ब्रजवासियों को अपने ऐश्वर्य से भगवत्ता से इंप्रेस करूं। तो हुआ क्या, तैसा व्यमो ही भगवान, उल्टा वो भगवान ऐश्वर्यशाली भगवान ब्रजवासियों के प्रेम के सामने व्यमोहित हो गए। इनको मोहित करने चले थे, किनको, ब्रजवासियों को, और भगवान स्वयं व्यमोहित हो गए या विमोहित हो गए ब्रजवासियों के प्रेम, और कितना ज्यादा, गत्वा ही विस्मृत देव कार्यो, कि अपना देव कार्य जो ऐश्वर्य का उनका महान कार्य है, राक्षसों का वध करना इत्यादि, धर्म की स्थापना, यदा यदा ही धर्म से, वो सब कुछ जो है वो सब देव कार्य है उनका, विस्मृत भूल गए। वृंदावन में लीला करते करते भगवान अपना देव कार्य भूल गए, इसलिए नारद मुनि को आना पड़ा लिस्ट लेकर। और नारद मुनि भगवान को बताते हैं, केशी का वध जब किया भगवान ने, तो नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि आप बिहाइंड स्केड्यूल चल रहे हो, ये इतने सारे राक्षस बाहर वेटिंग में हैं, आप यहां पे फुर्सत में लीलाएं कर रहे हैं आपकी। तो नारद मुनि ने देवादि देव उनको उनके देव कार्य याद दिलाए भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रजवासियों की मधुरता और भगवान की मधुरता का जो तालमेल वृंदावन में, जैसे कि भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ रोज अलग अलग खेल खेला करते थे, और एक बहुत ही उनका पॉपुलर गेम हुआ करता था कुश्ती का, कुश्ती लड़ा करते थे। अब कौन से धर्म में बताया जाएगा कि भगवान के साथ उनके भक्त कुश्ती लड़ रहे हैं? इमेजिन करो, अल्लाह के साथ कोई कुश्ती लड़ सकता? तो भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ कुश्ती लड़ते, और विशेष रूप से श्रीदामा इत्यादि, श्रीदामा बहुत शारीरिक बल श्रीदामा के अंदर था। तो फिर एक दिन हुआ क्या कि श्रीदामा वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि अरे तुम्हारे साथ ये कुश्ती लड़ने में मजा नहीं आता, तुम क्या, तुम कभी जीतते तो हो नहीं, कोई टक्कर के खिलाड़ी नहीं हो। क्या कहा भगवान को, तुम टक्कर के खिलाड़ी नहीं हो, चैलेंज नहीं है तुम्हारे साथ कुछ खेल। तो भगवान को ये बहुत इंसल्ट लगा, सरेआम इंसल्ट हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, श्रीदामा तुम ये समझ रहे हो कि तुम, मैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, तुम मुझे पराजित करके तुमको लग रहा है कि तुम, मैं तुमको स्वीकृति देता हूं इसलिए तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो, हाँ इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हो, तुमको पता है मैं कौन हूं? तो श्रीदामा ऐसे आंख फाड़कर सुन रहे हैं, अच्छा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहां से सीखे ये सब वर्ड्स। भगवान कहते हैं, अरे सीखे नहीं, मैंने अपनी भगवत्ता दिखाई है। तो श्रीदामा हंसने लगे, ऐसे जोर जोर से हाथ पीटते हुए हंसने लगे, ये एक तो भगवान वो पूर्ण पुरुषोत्तम और कह रहा है कि इसने वो भगवत्ता दिखाई, कहां दिखाई मैं बताओ, कहां दिखाई है तुम, पूतना 6 दिन का था मैं, वो पूतना इतनी बड़ी जो राक्षसी विकराल स्वरूप उसका वो सब खत्म करने वाली थी वृंदावन को पूरा, उस पूतना का वध किसने किया? तो श्रीदामा और जोर जोर से हंसने लगे और फिर सब ग्वाल सखाओं को बुला, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो क्या हो गया इसको आज, ये क्या बोल रहा है। तो भगवान और ज्यादा असमंजस में कि ये मतलब क्या विश्वास नहीं कर रहा। तो भगवान सब ग्वाल श्रीदामा सब ग्वाल सखाओं को बुलाता है और कहता है, ये वापस रिपीट करो क्या बोला अभी भी मेरे सामने। तो भगवान कहते हैं, अरे पूतना का वध अघासुर, वो अघासुर के मुख में तुम लोग सब मर चुके थे, तुम्हें पुनर्जीवित किया, उस अघासुर का उद्धार किया, तुम लोगों को ये भी याद नहीं? तो सारे ग्वाल सका और जोर जोर से सभी मिलके हंसने लगे, ये देखो कितना बड़ा जोक मार रहा है, इतना बड़ा जोक कर हमारे वृंदावन में बोलता है कि पूतना का वध इसने किया, अघासुर का वध इसने किया। भगवान कहते हद हो गई, हद कमाल है, गोवर्धन किसने उठाया 7 दिन 7 रात? अरे वो तो याद है, मेरे को नाम मिला है गिरिवर धारी गोवर्धन धारी की, वो किसी ने फोटो निकाली थी तुमको सबको, वो संवर तक बादलों से बाढ़ से बचाया किसने? और जोर जोर से इसने बोलता है गोवर्धन उठाया, ये क्या हो क्या, क्या डिंगे मारता है ये। भगवान कंफ्यूज्ड, फिर भगवान पूछते हैं, तो ठीक है मैंने नहीं किया तो फिर ये सब हुआ तो है ना, तो किसने किया? भगवान श्रीदामा कहता है मैं बताता हूं, असलियत मैं बताता हूं, और हम सब जानते हैं असलियत क्या है। ये जो तुम पूतना के बारे में डिंगे मार रहे हो कि तुमने पूतना का वध किया, वो तो ब्राह्मणों को बुलाया था और ब्राह्मण वो शुद्ध मंत्रोच्चारण कर रहे थे जिसके वजह से वो मंत्रों का इफेक्ट था पूतना के ऊपर। तुम ले रहे हो सर्टिफिकेट उसका। अब भगवान क्या बोले इसके सामने? फिर भगवान पूछते हैं, तो अघासुर तुम लोग सब वो अघासुर के मुख में जाकर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, मर तक गए थे, वो क्या? तो श्रीदामा कहता है, अरे भाई तुमसे पहले हमने प्रवेश किया था अघासुर के मुख में और हमने सब उसका काम तमाम किया था। तुम कह रहे हो तुमने किया था सब कुछ, लेट तो खुद घुसे थे अंदर अघासुर के मुख में। और गोवर्धन, गोवर्धन जो इतना 7 दिन 7 रात ऊपर उठाए, तो फिर श्रीदामा कहता है वो गोवर्धन की पूजा हमने की थी पहले, इतने भोग चढ़ाए थे गोवर्धन को, इतनी पूजा परिक्रमा सब कुछ गोवर्धन की जब की, तो गोवर्धन इतने प्रसन्न हुए हमारी पूजा अर्चना से कि गोवर्धन भाव विभोर होकर उछल गए और तूने जाके उंगली लगा ली नीचे और कहता है तूने गोवर्धन उठाया है, जा जा थोड़ा और दूध पी के आ, थोड़ा माखन खा के आ, कुछ थोड़ी शक्ति बनेगी तब जाकर मुझसे लड़ना। तो यहां भगवान इनके ऐसे प्रेम से व्यमोहित हो गए, इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं गत्वा मयैव सहि विस्मृत देव कार्यो, अपना देव कार्य भूल गए। ये है भगवान श्री कृष्ण की मधुरता जो कि प्रधानभूत थी वृंदावन में उनकी महानता की तुलना में। भुरिजन प्रभु हमारे श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, तो वो कह रहे थे वी सी गॉड डिस्प्लेड इन द वेस्टर्न रिलीजन एज समवन हु इज होल्डिंग अ पनिशमेंट रॉड, भगवान के हाथ में वो दंड है, दंड देने का दंड है, पनिशमेंट रॉड। And then we find in Damodar Leela, the same Supreme Lord is afraid of the rod held by Mother Yashoda. Who is holding that punishment rod? Mother Yashoda is holding Rudantam Muhurnetra Nigmam Rijantam Karamboja Yugmena Satanka Netram Muhushvasa Kampa Trirekhank Kantha. Yahan par ऐसे ऐसे डरे हुए भगवान की कंपित हो रहा है, श्वास अंदर बाहर डरे हुए, भारी सांस चल रही है। तो ऐसे डरे हुए भगवान किससे डरे हुए हैं? वो डर नहीं है, वो भय नहीं है, वो केवल भक्ति के वशीभूत हुए भगवान देव विस्मृत देव कार्य। तो इसलिए जब हम स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तो हमें भगवान की महानता और भगवान की मधुरता, इन दोनों की स्तुतियां करनी है, तब जाकर हम भगवान के कंप्लीट पर्सनालिटी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। अब स्तुति की जो विधि है एप्रिसिएशन, तो इसके कुछ मुद्दे हैं। जैसे यहां पर हमने 4C फॉर्मूला, हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो जो भी प्रार्थनाएं भक्तों ने की है, चाहे कुंती महारानी की हैं, गजेंद्र की हैं, देवकी वसुदेव, इनकी प्रार्थनाएं, तो प्रार्थनाओं में ये चार चीजें सम्मिलित होती हैं, या स्तुति में ये चार चीजें सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ है कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीला की तुलना करते हैं स्तुति में। तो हम भी जब भगवान के समक्ष आकर, राधा मदन गोपाल जी के समक्ष आकर जब स्तुति अर्पित करें, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें हम, तो इसके अंदर ये कंपोनेंट होना चाहिए। जैसे कि कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में वो कहती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय। तो वो कह रही है भगवान के हर एक अंग को किससे उसकी तुलना कर रही है? पंकज। पंकज अर्थात कमल। पंख कीचड़ को कहते हैं, कीचड़ से जो जन्मा पंकज, कीचड़ से जो जन्मा वो है पंकज या कमल। तो भगवान की तुलना, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादंबिनी में वो कहते हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त भगवत धाम पहुंचता है, तो सबसे पहले जब वो समक्ष भगवान के आता है, रूबरू भगवान को देखता है, इमेजिन कीजिए कि भगवत धाम पहुंचा है, अब डायरेक्ट भगवान का फर्स्ट दर्शन गोलोक वृंदावन धाम में जब वो लेता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को कोसता है। क्यों कोसता है? कि भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी तुलना एक भौतिक पदार्थ से की, मैंने आपकी तुलना एक कमल के पुष्प से की, मुझे लगता था कि कमल का पुष्प वो सबसे सुंदर है, परंतु अब जब मैं आपकी सुंदरता देख रहा हूं, तो कमल का पुष्प क्या है? इट्स एन इंसल्ट। सो अ डिवोटी बेग्स फॉरगिवनेस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा सेइंग, इट्स एन इंसल्ट टू कंपेयर यू विद सम ऑब्जेक्ट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, बट दिस इज द बेस्ट वी हैव। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन। जैसे रूप गोस्वामी ने स्वयं, उन्होंने ऐसे कंपैरिजन दिए हैं जिसको हम कहेंगे कि जस्ट लाइक अ बॉय इज अट्रैक्टेड टू अ गर्ल स्पॉन्टेनियसली, तो हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए वो एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमारी बुद्धि उसका ज्यूरिसडिक्शन वहीं तक जाता है, वैलेंटाइंस डे तक, उसके आगे नहीं जाता, तो इसलिए वो एग्जाम्पल उन्होंने यूज किया तो हम रिलेट कर सकते। तो ये है कंपैरिजन। सेकंड है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का अर्थ है कि हाँ, इसको हम ये भी कहेंगे, जैसे रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल, कि उन्होंने एक कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल यूज किया है, कि जैसे एक नव युवक नव युवती से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, उसी प्रकार से जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भजन में कहा, विषय जे प्रीति आमार, कि जैसे मुझे मेरे स्वयं के इंद्रिय भोग से या मेरे स्वयं के शरीर से मुझे इतना प्रेम है, कम से कम उतना तो प्रेम भगवान आपके प्रति मेरा जागृत हो। तो ये है कॉन्ट्रास्ट। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर, उन्होंने एक सुंदर श्लोक में भगवान वराहदेव और भगवान कृष्ण इन दोनों की स्तुति की है। वराहदेव और भगवान कृष्ण, तो इस सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, यद रोम रंध्र परिपूर्ति विधाव दक्षा वाराह जन्मनि बभूह रमी समुद्र तम नामनाथ अरविंद दृश्यम यशोदा पाणिर द्वयंतम जलैर स्नपयन बभूव। समझ गए? तो वो कहते हैं यद रोम रंध्र, सबसे पहले वराहदेव जो कि एक सूकर का रूप उन्होंने लिया, एक सुअर का रूप लिया, तो कितना बड़ा था इनका शरीर, एक उसका अंदाजा दे रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर। तो कैसे अंदाजा देते हो? रोम रंध्र, जो रोम छिद्र होते हैं बालों के हमारे, तो वराहदेव भगवान का एक रोम छिद्र आप लीजिए कितना बड़ा होगा, उसका एक अंदाजा वो दे रहे हैं। हमारे पृथ्वी पर या सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने समंदर हैं, वो सब का पानी लीजिए अगर ले सको तो, सारे समंदरों का पानी कितना होगा, उतना पानी भगवान वराहदेव के एक रोम छिद्र में आप डालो। सबसे पहले तो आप पूछोगे रोम छिद्र में पानी, उतना पानी आएगा? अरे आएगा नहीं, वो रोम छिद्र भरेगा नहीं। इतना बड़ा तो उनका एक रोम छिद्र है वराहदेव का, ये पूरे समंदर जितने सारे समंदर है उन सब का जल इकट्ठा कर कर डालेगा कोई तो उनका एक रोम छिद्र पूरा भर नहीं सकता। इमेजिन करो कि अगर एक रोम छिद्र इतना बड़ा है तो वराहदेव का पूरा शरीर वो कितना बड़ा। और ये वराहदेव ये एक अवतार हैं, किसके? ये अवतार हैं विष्णु के। विष्णु किसके? विष्णु है नारायण से निकले हुए, और नारायण वो किसके विस्तृत स्वरूप हैं? वो भगवान श्री कृष्ण जो कि मूल अवतारी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि नारायण के स्रोत हैं, जो कि विष्णु के स्रोत हैं, जो कि वराहदेव के स्रोत हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को जब रोज माता यशोदा नहलाई करती थी एक बाल्टी से, तम नाम नाथ अरविंद दृश्यम यशोदा पानीर द्वयंतम स्नपयन बभुआ, कि वो माता यशोदा जो वराहदेव के सोर्स हैं उनको एक बाल्टी से नहला दिया करती। इसको कहते हैं स्तुति। इसमें क्या दिख रहा है? महानता और मधुरता, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस। सो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्तुति में कॉन्सेप्ट है, इसको कहा गया है व्याज स्तुति। व्याज स्तुति अर्थात जब आप किसी का गुणगान कर रहे हो परंतु गुणगान में उस व्यक्ति की निंदा है, ऐसे दिखता है। देयर इज क्रिटिसिज्म बट इट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उसको बोलते हैं व्याज स्तुति। जैसे कि मान लो यदि मैं कहूं कि फलाना व्यक्ति इतना दयालु है कि एक दिन वो रोड पे आ जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया? अभी उसके बैंकरप्सी के बारे में बोला ना, लेकिन उसके बैंकरप्सी का कनेक्शन किससे है? ही सो चैरिटेबल दैट वन डे ही विल गो बैंकरप्ट। सो यू टेल मी, एम आई ग्लोरिफाइंग और एम आई क्रिटिसाइजिंग? कंफ्यूज हो गया। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ना. ही सो चैरिटेबल दैट ही विल गो बैंकरप्ट. तो वैसे ही रूप गोस्वामी बोलते हैं केशी घाट बिल्कुल मत जाना, कोई मत जाना केशी घाट. केशी घाट कहां है? वृंदावन में. केशी घाट कोई मत जाना. और अगर गलती से चले भी गए तो वहां पर वंशी वट के नीचे जो भगवान गोविंद त्रिभंग में बांसुरी बजा रहे थे उनको तो बिल्कुल देखना मत. आप लोग कहोगे क्या चल रहा है, जाना मत, चले भी गए तो देखना मत. तो कहते हैं आप गलती से अगर केशी घाट चले गए और आपने गलती से अगर श्री गोविंद का दर्शन त्रिभंग स्वरूप उनका देख लिया, उनकी बांसुरी को सुन लिया, तो आपका भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा. तो अगर आपको आपका भौतिक जीवन नष्ट करना है तो जाओ, बर्बाद करो अपने आप को. कैसी लगी ये स्तुति है ये, बाय द वे. जैसे आजकल की भाषा में भी लोग कहते हैं ना कि अरे क्या खतरनाक पावबाजी बनाई है ना. अब अगर इसको आप लिटरली ट्रांसलेट करो, खतरनाक पावबाजी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो डेंजरस पावबाजी. द पाव भाजी वॉज वेरी डेंजरस. नहीं, लेकिन उसके पीछे मूड कुछ और है. जब खतरनाक बोला गया है तो उसके पीछे मूड कुछ और है. तो इसको कहते हैं व्याज स्तुति, जहां पर वर्ड्स कुछ निंदनीय वर्ड्स यूज किए जाते हैं परंतु उसके अंदर ग्लोरिफिकेशन, एक अलग फ्लेवर है ग्लोरिफिकेशन का उसके अंदर. और फिर है स्तुति में जो स्तुति करता है उसके साथ भगवान का रिश्ता वो प्रस्थापित करता है, कोरिलेट करता है. जैसे कि महाराज कुलशेखर, उन्होंने अपनी प्रार्थना में अपनी स्थिति और भगवान नरसिंहदेव का ग्लोरिफिकेशन किस प्रकार से किया है. अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरैर महाबलि भीरिंद्रिय नाम धेय मोहांद कूप कुहरे विनिपाति तस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम. तो इस प्रार्थना में वो कहते हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं, अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य. तो अपनी स्थिति कैसे बता रहे हैं, हे लक्ष्मी नरसिंह मुझे किसी ने अंधा बना दिया, पट्टी बांध दी मेरे ऊपर, पट्टी बांध दी क्योंकि कुछ चोर हैं जो चोरी करने आए हैं और चोरी करने के लिए उन्होंने मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी ताकि मैं देख ना सकूं. तो अंधस्य, मुझे पहले अंधा बना दिया. तो फिर मानो भगवान पूछे इनसे, तो ठीक है तुम चिल्ला सकते थे ना, आंखों पे पट्टी बांध दिए मुंह पे तो नहीं, तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं. तो ये कहे कि ऋत विवेक, मेरी विवेक बुद्धि को भी पहले चुराया उन्होंने, पहले मेरी विवेक बुद्धि को चुराया. अब विवेक बुद्धि क्या होती है, सही क्या है गलत क्या है, उसकी पहचान विवेक बुद्धि कराती है. तो ये कहते हैं कि मैं चिल्ला भी नहीं सका क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं. कंफ्यूजिंग है ना, कि आपके डिस्क्रिमिनेशन पावर को चुरा लिया. तो फिर भगवान पूछे तो चुराया क्या, महाधनस्य, जो महान धन है. कौन सा महान धन, आपके प्रति जो मेरे अंदर प्रेम था उस प्रेम को चुराया, महाधन. और इतना ही नहीं भगवान, अंधा बनाया, विवेक बुद्धि को पहले चुराया, जो प्रेम आपके अंदर, आपके प्रति मेरे अंदर था उसको चुराया, उसके पश्चात मोहांध कूप कुहरे विनिपाति तस्य, अंधे कुएं में मुझे फेंक कर गए, बाहर भी नहीं छोड़ा, अंधे कुएं में फेंक कर गए। और ये अंधा कुआं क्या है? ये भौतिक संसार। तो अब ये चोर कौन है? तो भगवान पूछे कि वो चोर कौन है, तो ये कहते हैं इंद्रिय नाम धेय, इन चोरों का नाम है मेरी पांच इंद्रियां। तो ये पांच इंद्रियां हमको पहले अंधा बनाती हैं, विवेक बुद्धि हमारी हरती हैं, हमारे महान प्रेम धन कृष्ण प्रेम धन को चुराकर फिर हमें भौतिक संसार के अंधे कुएं में फेंकती है। तो ये अपनी स्थिति बता रहे हैं पहले दो लाइन में। फिर वो कहते हैं लक्ष्मी नरसिंह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लक्ष्मी नरसिंह, आप जो हो, आपके जो नख हैं, आपके जो नाखून हैं, आपके जो कर कमल हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं कि मैं कितने भी गहरे कुएं में फेंका गया हूं, आप वहां से मुझे उठा सकते हो। लक्ष्मी नरसिंह मम देही करावलंबम, मोहांध कूप कुहरे विनिपात, मुझे वहां से आप उठा सकते हो क्योंकि आपके अंदर ही वो शक्ति है, और कोई मुझे इस मोहांध से, अंधे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता, केवल आप लक्ष्मी नरसिंह निकाल सकते हो। तो यहां पर इस स्तुति में वो अपनी स्थिति बता रहे हैं और फिर भगवान से उनके शक्ति का गुणगान करते हुए भगवान से वो ये याचना कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्थ एलिमेंट है स्तुति का, टू कोरिलेट समथिंग पर्सनल। तो जब भी हम श्री राधा मदन गोपाल जी के सामने आए तो हमारे स्तुति में ये चार कंपोनेंट्स, द फोर सीज, ये होने चाहिए, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कोरिलेशन। तो प्रार्थनाओं के विषय में ये बताया गया है कि थ्री डिमेंशंस फॉर प्रेयर्स, फिजिकल, फिजिकल अर्थात हम जो हमारे इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं वंदना करते समय, जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं, हम नतमस्तक होते हैं, तो ये सब कुछ, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि नतमस्तक होना भगवान के सामने, जैसे कि मेरे ख्याल से डेढ़ साल पहले मुझे ये प्रश्न पूछा था कि ये जो आप लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, दंडवत करते हो, ये सब करने की क्या जरूरत है? मतलब इसमें अब भगवान क्या जानते नहीं है क्या कि मेरे दिल में क्या है? तो दिखावा क्यों? फाइनली क्या क्वेश्चन, वो प्रश्न किस पे बॉइल्स डाउन होता है? ये सब दिखावा क्यों कि इतना लंबा दंडवत करना भगवान के सामने, भगवान के सामने आके घुटने टेकना या हाथ जोड़ना, शो ऑफ क्यों इतना? ही डजंट नो अवर हार्ट, डेफिनेटली ही नोज अवर हार्ट। तो मैंने कहा आप जो कह रहे हो सही बात है, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। एक एक्सट्रीम क्या है कि दिखावे के लिए जो करते हैं, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, दिखाते ही नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? एक एक्सट्रीम है दिखावे के लिए करना, और दूसरा एक्सट्रीम है दिखाना ही नहीं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप वानखेड़े स्टेडियम में गए हो क्रिकेट मैच देखने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, आपका फेवरेट जो भी सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली, जो भी हो आपका फेमस हो प्लेयर आपका खेल रहा है, पूरा खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, 25,000 से ज्यादा दर्शक मैच देख रहे हैं, सारे भारतीय, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल चल रहा है, 6 बॉल 5 रन, वो स्थिति है, नेल बाइटिंग, नाखून पूरे खाली है। सचिन तेंदुलकर ने चौका लगाया, पूरा स्टेडियम क्या करेगा, 6 बॉल 5 रन, सचिन तेंदुलकर ने चौका लगाया, पूरा स्टेडियम क्या करेगा, दिखावा हा? क्या ये दिखावा, दिल में रखो ना सचिन तेंदुलकर की, ये सब पूरा स्टेडियम ताली मार रहा है, तालियों के गड़गड़ाहट में, वी लव सचिन, वी लव, और ये सब क्यों, क्यों ये सब दिखावा हा? मतलब स्टेडियम में तुम जब पागलपन करोगे तो वो तुम्हारा लॉजिकल है, और मंदिर में हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं वो दिखावा है, और तुम क्या कर रहे हो वहां पे। मैंने कहा ये ट्राई करना, यही सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान का मैच, लास्ट ओवर 6 बॉल 5 रन है, सचिन तेंदुलकर ने 4 मारा, पूरा स्टेडियम शांत, कोई ताली नहीं मार रहा है, क्यों, क्योंकि दिखावा नहीं करना है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, बाहर नहीं फोड़ेंगे, सब लोग एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस है, स्मशान शांति जिसको बोलते हैं, स्मशान शांति है पूरे स्टेडियम में, एक ने ताली नहीं बजाई, एक ने कुछ सचिन तेंदुलकर का गुणगान नहीं किया, जो भी कुछ नहीं, सचिन तेंदुलकर कंफ्यूज हो जाएगा, मैंने 4 मारा कि नहीं मारा है। वो सचिन तेंदुलकर छोड़ो, वो एम्पायर कंफ्यूज हो जाएगा, अरे देख क्या हो भाई, बॉल बाउंड्री के पार गया कि नहीं गया, सब लोगों को प्रॉब्लम क्या है, कोई कुछ हुटिंग क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने जवाब में एग्जाम्पल दिया, जस्ट लाइक व्हेन यू लव समवन एंड दैट पर्सन डज समथिंग ग्रेट, the expression of the heart comes out naturally. Therefore, when we come in front of the Lord, when we see His beautiful form, very spontaneously we fall down in front of Him saying that we surrender unto you. So, ye बाउंड्री के बाहर बॉल गली गई। सो इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द हार्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर ये एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने प्रेयर्स का इफेक्ट क्या होता है लोगों के ऊपर, वंदना का इफेक्ट क्या होता है लोगों के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च कर इस पुस्तक में लिखा है। अब ये कोई ग्रंथ नहीं है, जिन्होंने भी ये रिसर्च किया है वो कोई आध्यात्मवादी नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च। तो इस रिसर्च का निष्कर्ष ये निकाला उन्होंने कि जो अपने जीवन भर किसी न किसी प्रार्थना के प्रोसेस में या वंदनम के क्रिया में लगे रहते हैं, उनकी आयु 10 साल बढ़ जाती है, किसकी तुलना में, जो अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई प्रेयर्स में नहीं लगे या जुड़े। Their longevity increases by a decade as compared to those who do not pray. And this is, वो पूरा उन्होंने analysis किया है कि कैसे वो affect करता है। इसलिए इसके अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे instances use किए हैं। Even atheistic people, they have accepted this. Nastic. And they also pray. अब नास्तिक किसकी प्रार्थना, किसके प्रति प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। सो ये कहते हैं इसके अंदर, एथिस्टिक पीपल they don't believe in the object of prayer, but they believe in the concept of prayer. They don't believe in the object, but they believe in the concept. And they say that why we should be bereft of the benefits of praying, although we may not believe in the object, that there is a creator and all that, supreme. But we will not give up praying. तो उनके लिए अलग प्रकार की प्रार्थना वो लोग डिवाइस करते हैं नास्तिकों की, प्रेयर्स फॉर द एथिस्ट. यहां पर मुद्दा क्या है, द पोटेंसी ऑफ प्रेइंग. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग प्रार्थना के संदर्भ में, कि एक है सोशल पोजीशन और एक है इनर डिस्पोजिशन. तो इसमें हम कुछ उदाहरण लेंगे हमारे शास्त्रों से, जहां पर हम देखेंगे कि सोशल पोजीशन इन व्यक्तियों की बहुत विपरीत थी. जैसे कि वृत्रासुर, तो श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ये एक असुर, इनका नाम ये इसलिए पड़ा आवृत, जो सब जगह पर फैला हुआ हो. तो ऐसा असुर जो सब जगह पर फैला हुआ, और ये असुर ऐसा था कि दिखने में बहुत भयावह, ताम्र वर्ण के इसके केश और इसकी आंखें एकदम लाल लाल और एकदम बेहुदा शरीर, और दिखने में कुरूप बदसूरत. तो इंद्र के साथ, अब ये बहुत बड़ी कथा है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि इंद्र के साथ जब वृत्रासुर का युद्ध हुआ, तो इंद्र को भगवान द्वारा दिया गया शस्त्र था, और वृत्रासुर ये भगवान के अनन्य भक्त थे. हालांकि दिखने में ये बहुत क्रूर असुर दिखते थे, परंतु आंतरिक भाव इनका इतना शुद्ध था कि युद्ध लड़ते लड़ते ये इंद्र को परास्त कर रहे थे. ऐरावत, इंद्र के ऐरावत को इंद्र भी मूर्छित होकर गिर रहे थे. तो वो इंद्र को कहते हैं कि अरे इंद्र, तुमको मेरे आराध्य देव ने जो शस्त्र दिया है, उस शस्त्र का तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तुमको विश्वास नहीं है क्या कि वो मुझे खत्म करेगा? तो यहां पर शत्रु बता रहा है कि मुझे खत्म कैसे करो. और क्यों वृत्रासुर ऐसा कह रहे थे कि विष्णु द्वारा दिया गया उस शस्त्र से जब मैं मरूंगा तो मुझे तो भगवत धाम प्राप्त होने वाला. उसमें श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, हियर वी कैन सी हु इज अ डीमन, हु इज अ डेमिगॉड. वृत्रासुर सोशल पोजिशन वॉज दैट ऑफ अ डीमन, बट हिज इनर डिस्पोजिशन वॉज दैट ऑफ अ प्योर डिवोटी. तो मरने के पश्चात वृत्रासुर तो भगवत धाम गए, और इंद्र फिर से अपनी अमरावती में. सेकेंड एग्जाम्पल भरत महाराज का, कि भरत महाराज, अब ये तो एक असुर, भरत महाराज तो हिरण बने, तो सोशल पोजीशन देखो कितना बड़ा चेंज है. पूरे पृथ्वी के राजा एक हिरण बन गए, परंतु उनका इनर डिस्पोजिशन वो मेंटेन रहा. तो यहां पर मुद्दा क्या है कि सोशल पोजीशन हमारी कुछ भी हो, इसलिए एक्सट्रीम एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं. कोई अगर असुर है, हर प्रकार के आसुरिक लक्षण उसके अंदर है, परंतु इनर डिस्पोजिशन वो कितना इंपॉर्टेंट है. यदि कोई पशु की योनि में, यहां पर तो गजेंद्र एक असुर, एक हिरण, एक हाथी. अब गजेंद्र की कथा हम सब सुने हैं कि उस मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया गजेंद्र के पैरों को, तो गजेंद्र उस समय पिछले जन्म में जो उन्होंने प्रार्थनाएं याद की थी, वो प्रार्थनाएं उभर कर आई. देखो कितना पावरफुल है ये प्रेयर का प्रोसेस, कि शरीर बदल गया, और वो भी हाथी का शरीर. उस शरीर में भी उन्होंने इंद्रिय भोग में ही अधिकांश अपना समय बिताया, इंद्रिय भोग करने के लिए ही निकले थे गजेंद्र, परंतु पिछले जन्म में जो प्रार्थना उन्होंने अर्पित की थी वो प्रार्थनाएं उन्होंने उनकी विकट परिस्थिति में उनको याद आई। तो हमको लग रहा होगा कि अभी मैं स्वस्थ हूं, प्रार्थना कभी भी कर सकता हूं, विकट परिस्थिति अभी तो नहीं आई है। परंतु होगा क्या यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि गजेंद्र ने इतनी प्रैक्टिस की थी इसलिए विकट परिस्थिति में भगवान का नाम स्वाभाविक रूप से निकला। नहीं तो होगा क्या, जैसे प्रभुपाद वो कथा सुनाया करते थे, एक बंगाली महिला, उसके पुत्र उसको हर बार बोला करते थे कि मां तू बूढ़ी हो रही है, भगवान का नाम लेना शुरू कर या हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर। नहीं लेती थी वो, कभी नहीं लेती थी भगवान का नाम। तो प्रभुपाद ने कहानी सुनाई, तो फिर अब वो मृत छैया पर लेटी हुई, अब अंतिम चंद सांसें बाकी है इस महिला की, तो इसके दोनों पुत्र दोनों तरफ खड़े होकर अपनी मां से कहते हैं, मां अब तो कम से कम ये हरे कृष्ण महामंत्र कुछ सांसें बाकी है। तो ये मां कहती है, अंतिम दो सांस उसकी बाकी थी उस समय, कहती है, बाबा रे बाबा एतो बड़ो नाम नेते पारबे ना, मर गई। इतना बड़ा नाम ये हरे कृष्ण महामंत्र में कैसे लूंगी, और मर गई। अरे इससे अच्छा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, अरे कम से कम हरे कृष्णा निकाल लेती, वही जीव वही शक्ति वही समय था, दो चंद सांसें बाकी थी। जैसे हम ये स्टोरी सुनाते हैं ना कि एक पिता और एक पुत्र वो शव यात्रा देख रहे थे, रास्ते से शव यात्रा जा रही थी, है ना। तो शव यात्रा राम नाम सत्य बोलते हुए शव को ले जा रहे हैं, तो पुत्र अपने पिता से पूछता है, पिताजी क्या हो रहा है ये। पिताजी कहते हैं, तू नहीं समझेगा, जैसे वो बहुत समझ रहे थे, तू नहीं समझेगा। तो पुत्र बोलता है, नहीं नहीं बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं कि वो जो ऊपर लेटा हुआ है ये लोग ले जा रहे हैं, हाँ तो राम का नाम ले रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं। अभी वो बोलना नहीं चाहते थे कि ये मर गया है, वो सब वर्ड्स यूज नहीं करना चाहते, उसको ले जा रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं। बेटा पूछता है, तो पिताजी उसको वो लोग ऊपर सुला कर ले जा रहे हैं, वो लोग सब राम का नाम ले रहे हैं, वो क्यों नहीं ले रहा है। अब पिताजी को बोलना ही पड़ा, पिताजी ने कहा वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मरा हुआ है। तो बेटे का लॉजिक, इतना इंटरेस्टिंग लॉजिक वो पिताजी के ऊपर फेंकता है। बेटा कहता है, तो पिताजी आप कह रहे हो कि बाकी सब जो कंधा दे रहे हैं और सब जो चल रहे हैं उस यात्रा में शव यात्रा में, वो लोग सब राम नाम सत्य राम का नाम ले रहे हैं, वो ऊपर जो लेटा हुआ है वो नहीं ले रहा क्योंकि वो मरा हुआ है। अर्थात जो नहीं ले रहे हैं नाम वो भी मरे हुए हैं। तो पिताजी नहीं ले रहे थे। तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो चार लोग हमको कंधे पर उठाएं और फिर राम नाम सत्य कहें, इससे पहले हम ही शुरू हो जाए राम नाम सत्य बोलना, क्योंकि वही सत्य है, बाकी सब ढोंग ढकोसला। तो हम वृत्रासुर की एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुदार्थ प्रियम प्रियव विषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष ददृक्षत्वाम। ओ लोटस आइड लॉर्ड, एज बेबी बर्ड्स दैट हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर विंग्स ऑलवेज लुक फॉर देयर मदर टू रिटर्न एंड फीड देम। As small calves tied with ropes await anxiously the time of milking, when they will be allowed to drink the milk of their mothers, Or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects, I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. तो इस प्रार्थना में देखो, उन्होंने कंपैरिजन, कंट्रास्ट, हम जो जो मुद्दे लिए वो सब का समन्वय इन्होंने किया है, कोरिलेशन, कंपैरिजन किया है. बहुत सुंदर कंपैरिजन उन्होंने ये जो तीन एग्जांपल्स यूज किए. तो पहला एग्जांपल उन्होंने यूज किया है कि खग, पक्षी, मातरम खग. तो जैसे एक पक्षी के बच्चे होते हैं, चिड़िया ले लो, चिड़िया के बच्चे, तो वो घोंसले में रोज, अभी तक वो उड़ने लायक नहीं हुए, छोटे बच्चे उस चिड़िया के उड़ने लायक नहीं हुए, तो रोज जब मां जाती है कुछ दाना चुगने के लिए उनके लिए, तो कितनी आतुरता से ये वेट करते हैं कि कब हमारी मां आएगी दाना लेकर. तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल वो यूज कर रहे हैं कि इस प्रकार से मेरी चेतना आपके लिए ललायित रहे. अब इसमें देखिए, ये प्रोग्रेशन है, ये जो तीन एग्जाम्पल्स यूज किए हैं इसके अंदर प्रोग्रेशन है. बहुत हमारे आचार्यों ने सुंदर उत्प्रेक्षा की है इसकी. तो सबसे पहले जो चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है कि चिड़िया के बच्चे, सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वत्स मातरम, जैसे कि वत्स वो कैसे लालायित रहता है कि कब वो ग्वाला मुझे छोड़े और मैं गैया मां अपनी मां का दूध पीऊं. थर्ड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल. अब ये दो एग्जाम्पल में प्रोग्रेशन क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ने, चिड़िया ने बाहर से कुछ वस्तु लाई अपने बच्चों को देने के लिए. तो बाहर से कुछ वस्तु दे रही है अपने बच्चों को संतुष्ट करने के लिए. परंतु गाय का एग्जाम्पल हायर है, क्योंकि गाय बाहर से कुछ नहीं लाती है, अपने स्वयं का दूध दे रही है. सो द एग्जाम्पल ऑफ काउ एंड काफ इज हायर देन बर्ड एंड बर्डलिंग. और फिर थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है प्रिय प्रिय, जैसे कि एक पत्नी, एक पतिव्रता पत्नी जो एन आइडियल दंपति बोल रहे हैं हम. एक बार एक व्यक्ति को उसका मित्र कहता है कि आपकी और भाभी की जो जोड़ी है राम सीता की जोड़ी के समान, मैं जो देख रहा हूं इतने सालों से एकदम सीता राम की जोड़ी है, रामायण का ही आपका जीवन चल रहा है, पूरा सीता राम की जोड़ी. ये कहता है अरे खाक सीताराम की जोड़ी है, अब तक कोई रावण आया नहीं अपहरण करने के लिए, न धरती फट रही है कि समेट जाए अंदर, न कोई रावण आ रहा है, तो कंप्लीट तो हो रामायण पूरी. तो यहां पर हम चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं, वृत्रासुर जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जब वास्तविक प्रेम होता है तो उसके अंदर सेवा. सो हियर अवर आचार्य से दैट देयर इज सेवा इन्वॉल्व्ड बाय बोथ साइड्स, एंड व्हाट इज बीन ऑफर्ड, द हार्ट इज बीन ऑफर्ड. बर्ड के एग्जाम्पल में एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट वॉज ऑफर्ड, गाय के एग्जाम्पल में बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑफरिंग किया गया, यहां पर द हार्ट इज ऑफर्ड, अपना हृदय एक दूसरे को दिया हुआ है. तो इसलिए ये जो प्रोग्रेशन है इनकी प्रार्थना में, कितना लॉजिकल प्रार्थना है. अब है कौन ये वृत्रासुर, असुर हैं ये, तो सोशल डिस्पोजिशन, ये मैं इसलिए फोकस यहां पर कर रहा हूं इनके ये पर्टिकुलर थीम के ऊपर कि यदि कोई कहे कि अरे भाई मेरा सोशल पोजीशन नहीं है प्रार्थना अर्पित करने का, क्या कोई असुर कुल में, इतने ऐसे कुल में पैदा हुआ है, कोई क्या कोई पशु के शरीर में है, कोई हिरण है या कोई जैसे गजेंद्र, तो गजेंद्र की भी प्रार्थना हम लेंगे, ये वाली प्रार्थना जिसके अंदर ये गजेंद्र ने प्रार्थना अर्पित की है, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वामशेन सर्व तनुभृन मनसी प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। यहां पर गजेंद्र, याद रखना हाथी है और स्थिति क्या है, ग्राह ने उस मगरमच्छ ने पकड़ रखा है 1000 साल से, 1000 साल से, और वो भी स्वर्गीय वर्ष, उस मगरमच्छ ने पकड़ रखा है पैर। उस स्थिति में ऐसी प्रार्थना ऑफर करना, सोचिए कि बाहर का पोजीशन क्या है और अंदर का डिस्पोजिशन क्या है। तो वो कहते हैं भगवान को, यहां पर फिर से आप देखोगे द लॉर्ड्स ग्रेटनेस, द लॉर्ड्स स्वीटनेस, सब कुछ इसमें बताया गया। तो मुक्ताय, एक मैंने चौपाटी में एक संडे फीस क्लास दिया था केवल इस श्लोक के ऊपर, एक एक जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज को लिया था, अभी अपने पास उतना समय नहीं है, कभी समय होगा तो ये श्लोक के ऊपर हम एक सेमिनार देंगे, बहुत सुंदर श्लोक है गजेंद्र की प्रार्थना का। मुक्ताय, वो कहते हैं कि भगवान आप ही मुझे छुड़ा सकते हो मेरी विकट परिस्थिति से, क्योंकि आप मुक्त हो, मैं बद्ध हूं आप मुक्त हो। मुक्ताय, फर्स्ट क्वालिटी भगवान की बता रहे हैं। तो मानो कोई उनसे, गजेंद्र से पूछे कि कोई मुक्त होगा परंतु यदि उसकी नियत नहीं है, है ना, तो जैसे हमने कहा था कॉम्पिटेंस के साथ कैरेक्टर भी होना चाहिए, अगर नियत ठीक नहीं है तो वो क्यों आएगा मदद करने। तो कहते हैं भूरी करुणाय, आप न केवल मुक्त हो बल्कि आपके अंदर ऐसी करुणा है बद्ध जीवों के उद्धार करने की। तो कोई ये प्रश्न पूछे कि ठीक है मुक्त है उसके अंदर करुणा होगी, परंतु अगर वो आलसी है, ललाय मतलब आलसी, अगर कोई आलसी है तो वो आलस्य की वजह से नहीं आएगा मदद करने के लिए। तो यहां पर गजेंद्र कहते हैं अललाय, आपके अंदर बिल्कुल आलस्य नहीं है, इसलिए गजेंद्र के विषय में बताया गया है कि जब गजेंद्र ने प्रार्थनाएं अर्पित की तो भगवान कितने लालायित थे। ये बताया गया है कि भगवान गरुड़ को कहे निकलो तुरंत, गजेंद्र की सहायता मुझे करनी है, तो गरुड़ के ऊपर सवार हुए भगवान और गरुड़ को बार बार बोल रहे तुम बहुत स्लो जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, मेरे भक्त को वहां पर मुझे बचाना है। वो प्रार्थना उसने शुरू कर दी है, मुझे उस मगरमच्छ से उसको मुक्त करना है। तो गरुड़, सोचो क्या स्पीड होगी गरुड़ की, वो स्लो थे इनके स्टैंडर्ड के अनुसार, भगवान के स्टैंडर्ड के अनुसार। तो गरुड़ ने अपना फुल थ्रॉटल जिसको बोलते लगा दिया, फिर भी गरुड़ नहीं स्पीड पकड़ पाए, बेहोश हो गए गरुड़। तो भगवान उतरे, अब भगवान देखे एक तरफ वो गजेंद्र उनको बचाना है, दूसरी तरफ ये एक और भक्त मेरा ये बेहोश हो गया, तो भगवान ने गरुड़ जी को अपने कंधे पर उठाया और भगवान भागने लगे, चतुर्भुज रूप लिया, दो हाथों से कमंडलों से आचमन डाल रहे हैं गरुड़ के फिर से होश में लाने के लिए, और अपने दूसरे हाथ से उनकी धोती सरक रही थी तो धोती को पकड़ रहे हैं क्योंकि इतनी तेज वो भाग रहे थे। ये है अललाय, दैट इज हाउ ही इज एंथुजियास्टिक टू हेल्प कंडीशन लिविंग एंटिटी। तो फिर कोई कहे कि ये सब ठीक है परंतु क्या उनको पता है कि मेरा लोकेशन कहां पर है, लोकेशन मालूम होना चाहिए ना टाइम पे पहुंचने के लिए। तो फिर गजेंद्र कहते हैं स्वामशेन सर्व तनुभृन, वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान का परमात्मा के साथ है। जीपीएस कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञता भगवान का वो गुण, और फिर वो बृहते, उनके अंदर शक्ति भी है, मुक्ताय है, भूरि करुणाय है, अललाय है, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं, और फिर वो सर्वशक्तिमान। तो ये सारे गुण गजेंद्र कहते हैं क्योंकि आपके हैं, तो आपके इतने क्रेडेंशियल्स हैं तो बनता है आपका आना, है ना। फाइनली क्या है, निचोड़ क्या है, भगवान आपका आना बनता है, इमेज का सवाल है, आपके इमेज का सवाल है, इतने क्वालिटीज उन्होंने लिस्ट कर दिया। तो देखो कोई कह नहीं सकता कि मेरे सोशल पोजीशन के वजह से मैं वंदनम में नहीं लग सकता, यदि वृत्रासुर, भरत महाराज और गजेंद्र लग सकते हैं। तो वंदनम के ये दो जो पहलू हैं, एक है एक्ट ऑफ प्रेइंग और दूसरा है कल्चर ऑफ प्रेइंग। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दोनों में, दोनों का होना कितना जरूरी है, कि साइंटिफिक स्टडीज कुछ ऐसी बताती हैं कि उन्होंने ये देखा कि एक अस्पताल में एक पेशेंट एडमिट था और फिर उसको डॉक्टर्स ने कहा कि भाई पता है तुम्हारे लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं बाहर। तो पेशेंट ने पूछा कितने लोग कर रहे हैं, 85 लोग, 85 पीपल आर प्रेइंग फॉर यू। तो ये जब उसने सुना तो उसकी तबीयत और खराब हो गई। सोचो कि कोई अगर कोई पेशेंट है, 85 लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं, तो तबीयत सुधरनी चाहिए ना। तो इन्होंने ये रिसर्च किया कि प्रेयर का क्या ऐसे इफेक्ट होता है, तो उन्होंने देखा कि ये इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो क्यों खराब हो रही थी, क्योंकि जब उसने ये सुना कि 85 लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको लगा कि मैं सच में बहुत बीमार हूं, इतने लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं मतलब क्या तमाम होने वाला है मेरा काम। तो उस डिप्रेशन के वजह से उसकी बीमारी और बढ़ गई। सो द एक्ट ऑफ प्रेइंग वॉज गोइंग ऑन, बट देर वॉज नो कल्चर ऑफ प्रेइंग, क्योंकि इसने खुद प्रार्थना नहीं की भगवान से, इसलिए और इसका जीवन वो कल्चर ऑफ प्रेइंग, प्रेयरफुलनेस का नहीं था, इसके वजह से इफेक्ट उल्टा आ रहा था। तो केवल साल में एक बार या एकादशी के दिन भगवान के सामने आके, या फिर एग्जाम से पहले, या शादी से पहले, या शादी के बाद, केवल इन स्थितियों में आके अगर प्रार्थना करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। वी हैव टू लिव अ लाइफस्टाइल ऑफ प्रेयरफुलनेस, ये यहां पे बताया गया। व्हेन यू लिव अ लाइफ, यू हैव अ लाइफस्टाइल ऑफ प्रेयरफुलनेस, देन दैट प्रेयर विल हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। एंड देयरफॉर द फर्स्ट स्लाइड क्या थी आज की, prayer is the universal language of the human heart to communicate with the divine heart. It is the language of love. So, इस मुद्दे पर आपको हम हमारे आज का final slide, एक video दिखाना चाहेंगे जिसका शीर्षक है the language of love. Lights.
ये 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारे कलाकार हैं मेरी नजर में भी, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार अगर मुझे नजर आता है तो एक माँ में।
वाह,
हम सब ने बचपना गुजारी है। बचपन में हम 2 साल के जब थे, जैसे आप किसी 2 साल के बच्चे को देखते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा, जब वो खाना नहीं खाता है तो माँ उसको मना मना के, जोक सुना के, पता नहीं क्या क्या करके खाना खिलाती है, तब मुझे बहुत बड़ा एक्टर माँ में नजर आता है। 2-2.5 साल का बच्चा लगा रहता है, माँ बेटे जब खा खाना कब, पहले खाओ, अच्छा करूंगी तो फिर खाएगा तू। अच्छा मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। टीवी नहीं, चलो पहले खाओ, टीवी नहीं, अच्छा चलो ओके। पप्पा ये तेरे पप्पा ने खा दो, जिसको देखता पप्पा पप्पा पाले दो, खा बेटा खा तो खा। पप्पा ये तेरे पप्पा नहीं बेटे, ये तेरे पप्पा होते हम लोग यहां रहते क्या, पप्पा नहीं बेटे, पप्पा अरे अनिल अंबानी है, खा तो खा। पप्पा पप्पा बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर जब देखो तो बाहर जाना नहीं, बाहर जाना है, चल चल कर। कतरीना कैफ को देखते हैं पोस्टर पे, कतरीना कैफ दिखते हैं
नटखट चुनमुन
है, तेरे हाथ में आ जाएगी, सलमान खान के हाथ में नहीं आ रहे, तेरे हाथ में। अब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती, 80-85 साल की, बीमार हैं, लेटी हुई हैं, ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, आगे बगैर सिक्योरिटी वाले, यू नो AK-47 क्या है वो। अब आ जाते हैं देखने के लिए, डॉक्टर, दो दो डॉक्टर, 8-8 नर्स हैं, अब लोग नर्सें भी खड़ी हैं, तो बड़ा आदमी आएगा अपनी माँ को कैसे पुकारेगा। डॉक्टर साहब कैसी हैं, क्या हुआ सर, क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खा रही हैं। अब क्या खाना नहीं खा रहे तो पेट में कुछ होना चाहिए ना, तुम दवाई कैसे ले सकते, दवाई बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ बोलिए, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं। हेलो खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप, खाना खाइए ना, दवाई कितनी महंगी महंगी दवाइयां हैं, डॉक्टर लोग कितने बड़े पता है आपको, अब दवाई देनी है आपको, खाना नहीं खा, दवाई कैसे देंगे वो लोग, खाना खाइए आप। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा आई कांट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, समझ में नहीं आता क्या, खाना खाइए। अरे मौसी को बुलाओ यार, मौसी, मौसी आई, क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहे हैं ना, बड़ा हो गया है तू, जब तू छोटा था ना, है तू तोतली जबान में जो कुछ बोलता था ना, सब समझती थी, सब समझती। बहुत बड़ा हो गया ना, वो बोल रही है मुझे खाना नहीं चाहिए, ये दवाई नहीं चाहिए, वो बोल रही है अपने हाथ से एक निवाला खिला दूं, उठ के बैठ जाएगी। इसने तेरे को बहुत प्यार दिया जो छोटा था ना, तेरा बाप मर गया जिसको देखता था पप्पा पप्पा बोलता था, ये तेरे को पप्पा का भी प्यार दी, समझा ना, इसको प्यार चाहिए, इसके साथ बैठा था आप तो।
तो भगवान के विषय में कहा गया है भावग्राही जनार्दना, चाहे हमें संस्कृत भाषा आती है या नहीं आती, चाहे हम किसी असुर शरीर में हो, चाहे किसी पशु के शरीर में हो, चाहे मनुष्य के शरीर में हो, परंतु यदि हमारे अंदर वो प्रेम है, वो भावना है भगवान के प्रति, तो जो भी चाहे ABCD भी हम कहें तो भगवान उसे उस भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर द लैंग्वेज ऑफ लव, प्रेयर इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर द ह्यूमन हार्ट टू कम्युनिकेट विद द डिवाइन हार्ट। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो आने वाले महीने में जो हमारे मंदिर के प्रमुख कार्यक्रम है उनकी